اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین، محبوب رب المشرقین المغربین، جد الحسن والحسین، ابو القاسم محمد. ولا اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل جزاء الاحسان الا الاحسان. صلوات پڑھیں محمد. عزاداران امام، قیصر باغ بامبے کی یہ تھرڈ مجلس ہے اس ٹاپک کے اوپر. تین محرم کا دن گزر گیا، شب چار محرم آ گئی. جو قرآن مجید کا ویری ویری ریکمینڈڈ سورہ ہے سورہ مبارک رحمان، اس کی یہ مختصر آیت سے میں نے مجلسوں کا آغاز کیا. یہ 1444 ہجرہ 2022 کا عشرہ قیصر باغ. اللہ قیصر باغ کے درجات کو بلند کرے انشاءاللہ، اور ہم کو بھی توفیق دے، ہم کو بھی سعادت دے کہ ہم بھی کوئی ایسا کام کریں حسین ابن علی کے لیے کہ جو صدیاں چلتے رہے. محبان پنجتن کے زیر اہتمام یہ عشرہ ہوتا ہے. اللہ کہہ رہا کہ احسان کا بدلہ صرف احسان ہے. اگر تمہارے اوپر کوئی بامبے میں کوئی احسان کرے، کوئی فیور کرے، کوئی مدد کرے، تو یہ کہہ کر واپس نہ پلٹو کہ ٹھیک ہے اس نے کیا، سو واٹ. ہمیشہ جب بھی کوئی فیور کرتا ہے، جب بھی کوئی تمہاری مدد کرتا ہے، زندگی تمام اس کے احسان کا معاملہ. شیعہ وہی ہوگا جو احسان فراموش نہیں ہوگا، کبھی احسان فراموش نہیں ہونا. آلویز یو ہیو ٹو سے تھینک یو. دوسری بات یہ کہ اگر کوئی آپ پہ احسان کرے یا نہ کرے، اگر آپ کر سکتے کسی پہ احسان، کسی کی مدد، تو فوراً کرو. یہ انتہائی ثواب کا کام ہے. یہ سیرت معصومین ہے کہ ہمیشہ لوگوں کی مدد کرتے تھے. روزانہ صبح اٹھ کے دعا کرو کہ اللہ آج کا دن میرے لیے ایسی رحمت کا دن بنا دے کہ میں تیری مخلوق میں، تیرے بندوں کے، محبان آل محمد کی میں کوئی مدد کر سکوں. دوستو، اگر تم کو یہ چانس مل رہا، اف یو آر گیٹنگ چانس ٹو ہیلپ مومنین، اس سے بڑی بات نہیں ہے. یاد رکھو، اپنا پرسنل انٹرسٹ ہٹا کے لوگوں کی مدد کرنا، یہ سوچ کے نہیں کرنا کہ میں اس کی ہیلپ کروں گا تو بامبے میں میرا نام ہوں گا. نام کی بھیک لوگوں سے مت مانگو، نام کی بھیک علی سے مانگو. کبھی نہیں کرنا، کبھی ڈونٹ ایکسپیکٹ کہ تم اور ایک چیز، کہ جب تم کسی کے اوپر احسان کرتے، کسی کی مدد کرتے، پھر تم یہ ایکسپیکٹ مت کرو کہ وہ بھی تمہارے ساتھ کرے گا. نہیں کرتے، کوئی بات نہیں. تم نے جو کیا وہ اللہ کے لیے کیا، تم نے جو کیا امام کے لیے کیا. اور سب کو چانس بھی نہیں ملتا. یاد رکھو جو میں نے کہا کہ دعا مانگو، یہ بہت امپورٹنٹ دعا بتا رہا ہوں آپ کو. اس سے تم اپنی لائف میں گرو کرو گے. یو ول گرو ان بامبے، یو ول گرو ان بامبے. کبھی یہ دعا یہی کرتے رہو کہ اللہ مجھے موقع دے، گیو می چانس ٹو سرو دا کمیونٹی، گیو می چانس ٹو سرو اسلام، گیو می چانس ٹو سرو مولا حسین. یہ دعا مانگو صبح اٹھ کے مجلس میں بیٹھ کر، دعا مانگو کہ مولا مجھے موقع دے. ملینرس ہیں، بلینرس ہیں، میں ان کے ساتھ گھومتا ہوں پوری دنیا میں. بڑے بڑے پیسے والے، دولت مند ہیں، موقع ہی نہیں ملتا ان کو. دے ڈونٹ گیٹ چانس. توفیق اللہ کی طرف سے ہونا. اور جو جب بھی تم کسی کی ہیلپ کرو گے، تم گرو کرو گے، وہ دن تمہارے لیے پیسفل دن رہے. اس لیے کہ یہ جو صفت ہے ہیلپ کرنے کی، یہ اللہ کی صفت ہے، معصوم کی صفت ہے. ہر امام، ہر امام ہمیشہ کسی کی مدد کرتے تھے. کبھی مولا یہ نہیں بولتے تھے کہ میں کیوں اس کی مدد کروں، یہ تو میرا دشمن ہے، یہ تو مجھے نہیں مانتا. نہیں، जो भी आता हाथ फैलाता, मासूम उसके हाथ को खाली नहीं करता। ये सिफत हमारे पास आनी चाहिए। हर चीज पैसा नहीं है, एक रोटी है तुम्हारे पास, कोई आके मांगता है तो आधी रोटी दे दो, उसके बाद देखो कि अल्लाह तुम्हारी रोटियों में इंक्रीज कितना करता है, उसके बाद देखो कि अल्लाह तुम्हारी रिस्क में बरकत कितनी देता। वरना तुम 1,00,000 रुपया कमाओगे महीने में, उसमें बरकत नहीं रहेगी। कल आपने सुना कि अल्लाह के रसूल जहां हाथ रख देता था वहां बरकत होती थी। तो अगर सीरत रसूल सीरत इमाम अली पे चलना है तो हमेशा लोगों के साथ एहसान करो। शिया उसी को बोलते, नाम से शिया नहीं होता, उसके अमल से शिया बन जाता। मेरे यूथ को मेरा मैसेज है तुम्हारा कि तुम बॉम्बे में साल भर तुम्हारा रिस्क खुला हुआ रहेगा, कभी परेशानी नहीं आएगी। अगर तुम अल्लाह की मखलूक के लिए इमाम के चाहने वालों की हेल्प करो, दोस्तों इससे बड़ी सादत क्या है, इससे बड़ा ऑनर क्या है कि जो सिफत अल्लाह की है मदद करने की वो तुम्हारे पास आ गई, कितनी बड़ी बात। लेकिन बार बार एक जुमला बोल रहा मैं कि अपने इंटरेस्ट के लिए नहीं करना, कि मैं अगर बॉम्बे में इसकी हेल्प करूंगा तो पूरे महल्ले में डोंगरी में मेरा नाम होगा, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। अगर तुम नाम के खातिर कर रहे करो, सिर्फ ये सोच के कि मेरा हुसैन करता था इसलिए मैं कर, मेरा मौला ने कहा इसलिए। हमेशा जब भी मंथली सैलरी लेकर आओ, अपनी सैलरी में से हर महीने किसी एक यतीम फैमिली को बॉम्बे में, किसी एक बेवा को, किसी एक गरीब को, किसी एक मिस्कीन को, मैं यहां बॉम्बे में खुल के बोल सक रहा, यूरोप अमेरिका में नहीं बोलता, इसलिए कि वहां पे कोई गरीब नहीं है, वहां सब पैसे वाले। हमारे मुल्क में, हमारे शहर में कितने गरीब हैं, कितने यतीम हैं कि जहां सुबह चूल्हा सुलगता है तो शाम में चूल्हा नहीं सुलगता, सुबह में एक रोटी है तो शाम में एक रोटी नहीं है। अब आपकी जिम्मेदारी है, तुम्हारे पास हजारों रोटियां हैं, तुम्हारी भूख एक रोटी की है, जो इतनी रोटियां अल्लाह ने दी है, इतना जो रिस्क दिया है वो किसके लिए, ये करो। उसके बाद देखो बॉम्बे में तुम्हारे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे, स्ट्रेस खत्म हो जाता जब तुम किसी की मदद करते। एहसान हमेशा करना, एहसान समझ के एहसान मत करो, सीरत इमाम है इसलिए करो। मैं क्या बोल रहा हूं, बात शुरू हुई कल जनाब अबू तालिब और बीबी खदीजा पे, ये 5 दिन पढ़ूंगा बोला मैंने। कल जनाब अबू तालिब के ऊपर बात हो रही थी कि अबू तालिब वो मोहसिन इस्लाम है कि जिसने इस्लाम पर एहसान किया, ऐसा एहसान किया कि कलमा मक्के में बाकी रहा अबू तालिब की वजह से। मैंने बहुत बड़ी बात बोली, कलमा बाकी रहा, अल्लाह का नाम बाकी रहा, बचाने वाला अल्लाह, अल्लाह के रसूल के साथ ऐसा शील्ड बना के चलते थे। अब मैं एक छोटा सा वाकया मक्के का पढ़ता, मेरी तरफ देखो, ये शिया सुनी सारी किताबों में ये वाकया है। अबू तालिब की मदद देखो क्या है, अल्लाह के रसूल सबको प्रोटेक्शन कैसे दिया वो देखो। खाने काबा, अल्लाह हमको ज्यारत नसीब करे, खाने काबा की ज्यारत के लिए एक बावाज़े बुलंद सलावत पढ़ो, मोमिनीन अगर आप सलवार पढ़ के आगे आ जाए तो बाद में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। प्लीज पीछे वालों को बोलो, आप लोग भी आगे आ जाए, यह जगह बहुत है, राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे प्लीज आगे आइए, फिर बाद में फिर आपको आना पड़ेगा, अभी आगे आ जाओ प्लीज। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक सलवार पढ़े बाबा से बोला, आगे आ जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह, मौला आपको सलामत रखे, आबाद रखे। मौला हुसैन के नाम पे इमाम ज़माना की सलामती के लिए बावाज़े बुलंद सलवात पढ़ो, मक्के में अल्लाह का रसूल खाने काबा में नमाज पढ़े। अब मेरी तरफ देखो, खाने काबा में सरकार नमाज पढ़े, इस्लाम आके चंद महीने या चंद साल हुए, सरकार नमाज पढ़े, और उस वक्त काबा ऐसा नहीं था, काबा था लेकिन अतराब में लोगों के घर थे, इतना बड़ा नहीं था काबा, अतराब में घर थे, और जितने ये मक्के के काफिर सरदार थे वो लोग आके अपने ग्रुप्स बना के मक्के में बैठते थे काबे के सामने, देखा कि अल्लाह का रसूल नमाज पढ़। कौन कौन था? अबू सुफियान था, अबू जहल था, अबू लहब था, वलीद था, खालिद था, ये सारे जालिमीन। अपनी जबान में बोलो, सही बुखारी के सही टेररिस्ट यही है। मैं नहीं बोल रहा, सही बुखारी बोल रही है। मैं उस किताब का नाम ले रहा कि जो सदियों से सही कहा गया लेकिन अब तक सही नहीं हुई। समझ आई बात? तो सरकार नमाज पढ़े, ये सारे जालिमीन बैठे हुए, और वहीं पे काबे के थोड़े हुदूद के बाद एक ऊन ज़िबा हुआ था। इन लोगों ने ऊन की पेट की जो गंदगी थी अपने गुलाम से कहा कि लेके जाके अल्लाह के रसूल पे लगा दो। सोचो सोचो, अल्लाह का रसूल अल्लाह की बारगाह में नमाज पढ़, ये जालिमीन ने खून और जितनी गंदगी थी पेट की लेके जाके सरकार के चेहरे पे लगा दी, और सब मिलके हंसने लगे, जोर जोर से खैखे लगाने लगे। अल्लाह का रसूल नमाज को तोड़ता नहीं है, जो खुद नमाज है। आपकी आंखों में शबनम से ज्यादा पाक और पाकीजा आंसू आ गए, शबनम से ज्यादा पाक और पाकीजा आंसू सरकार की आंखों में आए। नमाज को कंप्लीट किया, पलटे, पलट के सीधा जनाब अबू तालिब के पास गए। उसी हालत में मैं एक बात यहां रोक, क्यों गए अबू तालिब की मदद लेने? मैं प्लीज मेरा जुमला गौर से सुनो, आप खुश होंगे। सामने काबा है, सामने अल्लाह का घर है, अब रसूल को करना क्या चाहिए? सीधा काबे के पास जाते, हजरत अस्वद के पास जाके बोलते अल्लाह इनको देख ले। गए अबू तालिब के पास, आज उन लोगों का जवाब है ये कि जो ये कहते कि सिर्फ अल्लाह अल्लाह से मांगो, नहीं समझे। ये वहाबी भाइयों के लिए जवाब है, जब रसूल डायरेक्ट नहीं मांग रहा, अबू तालिब के थ्रू मांग रहा, तो हम कैसे मांगे? काबे में नहीं गए, सीधा आए अबू तालिब के पास। जनाब अबू तालिब ने देखा कि आपके चेहरे पे, पूछा बेटा ये किसने किया? तो कहा ये 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 ये। कहाँ है वो लोग? तो कहा काबे में बैठे। अबू तालिब ने पुकारा जनाब हमजा को, बनी हाशिम के जवानों को लिया, तलवार नियाम से निकाल ली, सामने जनाब अबू तालिब, साथ साथ अल्लाह का रसूल, जनाब हमजा, सारे भाइयों को, बनी हाशिम के जवानों को ले गए। सीधा पहुंचे अबू सुफियान के पास जो बैठा हुआ, तलवार को निकाल के गर्दन पे यहां पे तलवार को रखा, रख के कहा अबू सुफियान सुन ले, यकीम है अब्दुल्ला अकेला नहीं हूं मैं इसका सरपरस्त हूं। आज के बाद अगर मेरे भतीजे के साथ कोई गुस्ताखी करेगा मैं उसकी आंख तोड़ दूंगा, मैं उसकी गर्दन को कलम कर दूंगा। ये मत समझो कि मक्के में मेरे भतीजे का कोई सरपरस्त नहीं है, आज से मैं सरपरस्त हूं, मैं प्रोटेक्टर हूं। रसूल पे अगर किसी ने निगाह उठाई तो मैं उसकी आंखों को तोड़ दूंगा। ऐसा ऐसा प्रोटेक्शन करके अल्लाह के रसूल को ले, ये एहसान है, ऐसा एहसान किया है, कोई बचाने वाला जाहिरी तौर पे नहीं था। वो अबू तालिब की पर्सनालिटी कि जिन्होंने शील्ड बनकर अल्लाह के रसूल की हिफाजत की। दुनिया क्या बोले, तारीख में नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसके एहसान को अल्लाह माने वो अबू तालिब है, जिसके एहसान को रसूल माने उसको अबू तालिब। दो पर्सनालिटीज हैं मक्के में, दो हस्तियां हैं कि जिन्होंने फानूस बनकर चिराग मोहम्मदी को बचा लिया। मैं कैसे जुमले बोल रहा हूं, शील्ड बनकर चिराग। एक बीबी खदीजतुल कुबरा है, लाखों सलाम हमारा हमारी मां को, अल्लाह के रसूल की ये वो बीवी है कि जिसके साथ अल्लाह के रसूल ने सबसे ज्यादा मैरिड लाइफ गुजारी, शादीशुदा जिंदगी, जितनी अजवाज है
जितनी वाइफ्स है रसूल की, उन सबसे ज्यादा कोई 2 साल, कोई 3 साल, कोई 4 साल, कोई 1 साल रहा, लेकिन अल्लाह के रसूल ने अपनी पूरी जिंदगी में 63 ईयर्स की लाइफ में 27 ईयर्स ऑफ मैरिड लाइफ खतीजा के साथ गुजारी। आप सोचो जो सबसे ज्यादा जिसके साथ जिंदगी गुजारी उससे 5 या 6 रिवायतें हैं बस। बस एक ऐसी बीवी है रसूल की जिसके साथ 2000 रिवायतें हैं कि जिनके साथ रसूल ने साल या 2 साल या 3 साल या 4 साल गुजारे, ऐसा लगता कि 24 घंटे यही लगी हुई रहती थी। यार आहिस्ता तो मत सुनो ना, आप समझ, नाम तो नहीं ले रहा। शिया मेरा यूथ बड़ा स्मार्ट है, शिया हमेशा इंटेलिजेंट होता, शिया बेखूफ नहीं होता। क्यों नहीं होता? इसलिए कि तुम बाबुल मदीनतुल इल्म से वाबस्ता, अली के दर से वाबस्ता। बेखूफ वो हो जिसका रहबर बेखूफ हो। हमारा रहबर अखल कुल है, अव्वल अकल है, अव्वल अदल है। तो 27 ईयर्स अल्लाह के रसूल ने बीबी खदीजा के साथ गुजारा। आज हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में ये कहते हैं कि जनाब खदीजा की एज 40 ईयर्स की थी जब आपकी शादी हुई और रसूल अल्लाह 25 साल के थे। ये गलत है। खैसरबाग के मेंबर से बोल रहा, पूरी दुनिया सुन रही मुझे डिफरेंट चैनल्स के ऊपर, मैं एक एक जुमले का जिम्मेदार हूं। आई एम रेस्पॉन्सिबल व्हाट आई एम सेइंग, मैं जिम्मेदार हूं जो मैं बोल रहा। बीबी खदीजा का सिन 40 बरस का नहीं था, यह दुश्मन तारीख ने लिखा, दुश्मन हिस्ट्री लिखने वालों ने लिखा कि खदीजा का सिन 40 ईयर्स का था और अल्लाह के रसूल का सिन 25 ईयर्स का था शादी के वक्त। यह गलत है। 25 साल के रसूल अल्लाह थे, बीबी खदीजा सिर्फ 2 साल रसूल से बड़ी थी। शी वॉज 27 ईयर्स ओल्ड एंड अल्लाह का रसूल 25 ईयर्स के थे। आपकी शादी सिर्फ 2 साल का डिफरेंस है। यहां पे प्लीज गौर से सुन, यहां पे बीबी खदीजा के ऊपर एक तोहमत और लगाई गई कि आप पहले शादीशुदा थी। आ हमारी तारीख में नहीं, आम मुसलमानों की तारीख में कि बीबी खदीजा की पहले शादी हुई थी, आप बेवा थी या डिवोर्सी थी, जो भी था, विडो थी, ये मुसलमान लिखते हैं। लेकिन हमारी तारीख और आम मुसलमानों के गैर मुतासिब राइटर्स, जो अच्छे राइटर्स हैं, उन्होंने इस बात को लिखा कि खदीजा की पहली शादी नहीं हुई थी। हमारा बिलीव भी यह है, हमारा बिलीव भी यह है कि हमारे सारे उलमा ने लिखा, हयातुल खुलूब में अल्लामा मजलिसी ने भी लिखा कि खदीजा की कोई शादी नहीं हुई थी, पहली शादी थी वो रसूलुल्लाह के साथ थी। अब मैं बोलूं, एक हमारा खतीब, एक हमारा आलिम, उसने इतनी अच्छी बात की, वार से सुनो खुश हो गए, इतनी अच्छी बात की कि खदीजा की शादी पहले नहीं हुई। इसलिए नहीं हुई कि खदीजा मां बनने वाली थी फातिमा की। बीबी फातिमा की मां बनने वाली है तो वो किसी और के पास नहीं जा सकती, ये समझ दियो ना। जनाबे खदीजा की शादी कैसे हुई पता है रसूल से? हाउ शी गॉट मैरिड, यू नो हु इज खदीजा, क्या पर्सनालिटी थी खदीजा की? आपको मालूम जनाबे खदीजा अल कुबरा अरब की रिचेस्ट लेडी ऑफ द अरब मिडिल ईस्ट, रिचेस्ट लेडी मलकतुल अरब, इससे ज्यादा दौलत पूरे अरब में, पूरे मिडिल ईस्ट में किसी के पास नहीं थी जो खदीजा के पास था। इतनी दौलत थी। आप बिजनेस वूमेन थी, आपका बिजनेस था बीबी खदीजा का, आपके पास 70,000 कैमल्स थे, ऊंट। आप बोलेंगे आज के जमाने में ऊंट की क्या वैल्यू है, यही बोलेंगे ना। उस जमाने में एक कैमल 40 फीट का कंटेनर, जो आज के पास किसी के पास अगर 40 फीट का कंटेनर है तो वो 40 फीट का जो कंटेनर काम करता वो एक कैमल काम करता था। उस जमाने में मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, समझ रहे मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, एक जगह से दूसरी जगह, जैसे आज आप देखते हैं कि कंटेनर्स जाते रहते ट्रेलर्स के ऊपर, एक जगह से दूसरी जगह सामान शिफ्ट होता, उस जमाने में ऊंट पे होता था। तो आपके पास 70,000 कैमल्स थे, मैं अपनी हिस्ट्री नहीं बोल रहा, आप सोचो गिनने बैठेंगे तो आप दिन निकल जाए, 70,000 कैमल्स आपके पास थी। आपका बिजनेस कामकाम था, आप मक्के में रहती थी, मदीने में, सीरिया में, यमन में, ईरान में, अफ्रीका में, इजिप्ट में, ये पूरी कंट्रीज को आपका सामान जाता था। इतनी बड़ी कंपनी पूरे मिडिल ईस्ट में नहीं थी, अकेली औरत, फिर बोल रहा, शी वॉज ऑल अलोन। इतनी इंटेलिजेंट थी कि अकेली रहकर इतना बड़ा बिजनेस चलाया, इतना बड़ा बिजनेस। और उस वक्त व्हाट्सएप नहीं था, टेलीफोन नहीं था, ईमेल नहीं था, मोड ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम जीरो था। जीरो कम्युनिकेशन सिस्टम में इतनी इंटेलिजेंसी से, इतनी जहानत से खतीजा ने बिजनेस को एक्सप्लोर किया कि पूरे मिडिल ईस्ट में आपके ऊन जाते थे, आपके बिजनेस कारवांस जाते थे और जाकर काम करते थे और पैसा लाते थे। शी वॉज रिचेस्ट लेडी ऑफ द मिडिल ईस्ट। अजीजो इतना पैसा आपके पास था, इतना पैसा, सर उठा के नहीं चलती थी, गुरूर नहीं था, तकबुर नहीं था, वेरी डाउन टू अर्थ शी वॉज, वेरी डाउन। आप मेरी इंग्लिश नहीं समझ रहे, मैं उर्दू में बोलता, इतना इंकसारी थी, हमेशा सर झुका के बाद। इतनी दौलत के बाद आज अगर हमारे पास लाख डॉलर आ जाएं तो हम तो सर उठा के चले बॉम्बे में, पैसा आ जाए तो गरीब से बात नहीं करें, भाइयों से बात नहीं करें, दौलतमंद लोगों का तो यह हशर है, जब ज्यादा पैसा आ जाता तो हाथ भी वजन हो जाता, कोई सलाम करे तो हाथ भी नहीं उठता। इतनी दौलत के बाद खतीजा उस बीवी का नाम है कि इतनी डाउन टू अर्थ है, इतनी इंकसारी है, सर झुका के बाद, लोगों से प्यार से बात, सॉफ्ट स्पोकन, थोड़ा स्टेटस आ जाए हमारी जुबान बढ़ जाती, सर उठा के चलते। ये चीजें सीखो मजलिसों से। हमारी मां खतीजा की सीरत यह है, कोई नहीं पढ़ता, इसलिए मैं ये बीवी के हालात पढ़ रहा कि मालूम होना चाहिए कि हमारी मां का कैरेक्टर क्या था। और अभी इस्लाम नहीं आया, फिर बोल रहा, अभी इस्लाम नहीं आया, इतना पाक और पाकीजा पैसा था खतीजा का, इतना पाक और पाकीजा पैसा कि आपको मक्के के काफिर ताहिरा और सिद्दीका कहते थे। ताहिरा और सिद्दीका, ये लकब मेरी शहजादी के हैं, मजलूम बीबी जहरा के लकब है, मजलूम बीबी जहरा को भी ताहिरा और सिद्दीका कहते। असल में ये लकब उनकी मां खतीजा को काफिरों ने दिया। ताहिरा के माने पाक और पाकीजा, क्लीन। सिद्दीका के माने सच बोलने वाली। सोचो काफिर अगर बोले कि खदीजा सच बोलने वाली है तो क्या मकाम है खदीजा का। दुश्मन बोल रहा, ये हमारे लिए पैगाम है, ये हमारे लिए मैसेज है कि हमको भी यही बोलना चाहिए। दूसरे लोग बोलना कि ये अली का शिया, ये हुसैन का आजादार, ये हमेशा सच बोलेगा। तुम्हारी डे टू डे लाइफ में, तुम्हारे बिजनेस में, तुम ऑफिस में, तुम इतने सच बोलना। इमाम अली बोलते कि मेरे शिया की पहचान सच्चाई है, ऑनेस्टी है। मैं यूथ को बोल रहा, तुम अपने कैरेक्टर को ऐसे डेवलप करो, अपने किरदार को इतना बढ़ाओ कि लोग बॉम्बे में जिस महल में तुम रहते, जिस बिल्डिंग में तुम रहते, जिस एरिया में तुम रहते, जिस स्कूल और कॉलेज में तुम पढ़ते, तो पूरा स्कूल और कॉलेज में आके अगर तुम्हारे प्रिंसिपल को पूछे कि आपके पास 1,000 स्टूडेंट्स है, ये बताओ कि 1,000 स्टूडेंट्स में सबसे ज्यादा सच बोलने वाला कौन है, तो वो तुमको बताए। ये शिया की पहचान है। मजलिसों से ये सीखो, इस तरह अपनी लाइफ को डेवलप करो। खतीजा को दुश्मन बोलते थे, ये ताहिरा है, ये सिद्दीका है, ये पाक और पाकीजा क्लीन है। और
ये सच बोलने वाली है। दोस्तों एक बात बोलूँ यहाँ रोक के, आप बहुत खामोशी से सुन रहे हैं ना, अब आपकी खामोशी को मैं ब्रेक करता हूँ। बिजनेस वुमन है, बिजनेस में भी झूठ नहीं बोला। आज हम बिजनेस में झूठ बोलते। मुझसे एक सवाल किया गया कि मौलाना प्लीज गौर से सुन, मुझसे सवाल किया गया कि मौलाना ये बताओ क्या बिजनेस में झूठ बोल सकते। मैंने कहा आप मुझसे क्यों पूछ रहे, गो एंड आस्क के मामा अली को पूछा। उसने कहा नहीं मौलाना ये 21st century, बहुत बड़ा पैसे वाला बिजनेसमैन था। उसने कहा मौलाना ये बताओ कि आज के दौर में थोड़ा सा झूठ चलता है, थोड़ा भी नहीं चलेगा बिजनेस में। मैंने कहा नहीं नहीं चलता, इमाम अली परमिशन नहीं देते, इस्लाम परमिशन नहीं देते। तो उसने कहा मौलाना कैसे, मौलाना कैसे पॉसिबल है, 21st century है, 21वीं सदी में कोई बगैर झूठ बोले सुबह से शाम तक बिजनेस नहीं कर सकता, कहीं ना कहीं तो झूठ बोलना पड़ता। मैंने कहा इस्लाम परमिशन नहीं देता, पैसे वाला बिजनेसमैन ने। कहने लगा ये पॉसिबल कैसा है, गौर से सुनो। मैं कहने लगा कि क्या इमाम अली के जमाने में कोई उनका चाहने वाला बिजनेस करता था और उसने झूठ नहीं बोला। मैंने कहा यस। उसने कहा कौन था बिजनेसमैन। मैंने कहा बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, बहुत बड़ा, इतना बड़ा बिजनेसमैन था कि कोई कूफे के बहुत बड़े मॉल में उसका शोरूम था। आप नहीं समझे, अब मजलिस के बाद मॉल नहीं पूछे, मॉल का नाम नहीं पूछे। मोमिनीन मुझे माफ कर दो, प्लीज आगे आ जाओ, बाहर बहुत मजमा है, प्लीज आगे आ जाओ, यहाँ पे भी जगह है, यहाँ पे भी जगह है, आइए आइए आइए, उठे भाई उठे। एक बाबा से बलंद सवाल पढ़ ले, टाइम निकल गया मेरे हाथ से। तो उस बिजनेसमैन ने कहा मौलाना क्या झूठ चलता, प्लीज गौर से सुनो। मैंने कहा नहीं चलता। उसने क्या किया इमाम अली के जमाने। मैंने कहा एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। उसने पूछा उसका नाम क्या था। मैंने कहा मीसम है तमाम। उसने कहा मीसम बहुत बड़ा बिजनेस था। मैंने कहा यार कूफे के बड़े मॉल में उसका शोरूम था। मैं आपकी लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, मॉल वॉल नहीं था उस जमाने में, मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। मजलिस के बाद आप कहीं बाहर मुझे पूछेंगे मॉल का नाम क्या था। डोंट आस्क मी, मैं आपकी लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ। मैंने कहा बहुत बड़ा बिजनेस था और कूफे के बहुत बड़े मॉल में शोरूम था। ही सेड क्या बिजनेस था मीसम का। मैंने कहा खजूर का। इसने कहा खजूर का भी कोई बिजनेस है। पैसा जब आ जाता ना कोई चीज नजर नहीं आती, हर चीज में। मैंने कहा आज अगर कोई डायमंड मर्चेंट है, डायमंड मर्चेंट हीरो का काम करने वाला, कितना बड़ा स्टेटस है। मैंने कहा उस जमाने में खजूर का कारोबार ऐसा होता था। अरे खैबर से पहले तो मुसलमान पेट भर के खजूर भी नहीं खाए। ये आपकी मेरी रिवायत नहीं है, वो उम्मुल मोमिनीन की रिवायत है। समझ में आई, उम्मुल मोमिनीन समझ गए ना। ये उम्मुल मोमिनीन मदीने की उम्मुल मोमिनीन की रिवाज है, मक्के की उम्मुल मोमिनीन तो मेरी माँ खतीजा है। तो उम्मुल मोमिनीन की रिवायत है सही बुखारी की के खैबर से पहले तो हमने कभी खजूर नहीं खाया पेट भर के। वो तो अली का कमाल था कि खैबर को फतह कर लिया। खैबर फतह हो गई, इतना माल गनीमत मिला कि हर घर में ईद हो गई, हर घर में एक ही आवाज थी कि जंग कैसे फतह हुई, अली से फतह हुई। अली ने अपनी जिंदगी में मदीने में अली अली करा दिया। मुलाबाद रख। तो इसने कहा बहुत से सुनो, इसने कहा कि क्या मीसम ने खजूर बेचा, कल का खजूर आज का ताजा खजूर है बोल के नहीं बेचा।
झूठ नहीं बोला, एक खजूर भी। मीसम ने झूठ बोल के नहीं बेचा। आई सेड नो, ही सेड के मौलाना क्या ये किताब में लिखा हुआ है? मैंने कहा लिखा हुआ नहीं है। उसने कहा जब लिखा हुआ नहीं है तो आप इतने कॉन्फिडेंटली कैसे बोल रहे, इतने यकीन के साथ कैसे बोल रहे कि मीसम ने एक खजूर कल का था ये कह के बेच दिया कि ये फ्रेश है। मैंने कहा मीसम ने झूठ बोला नहीं, एक खजूर भी नहीं किया, आधा खजूर भी नहीं बेचा। इसने कहा बिजनेसमैन कि हाउ कैन यू प्रूफ, आप इसको प्रूफ कैसे कर सकते कि नहीं बेचा। अब सुनो, मैंने जवाब ये दिया, मैंने कहा मीसम ने नहीं बेचा, मैं प्रूफ ऐसे कर रहा कि कभी कभी मीसम बिजी होते थे, उनको बाजार जाना पड़ता था, मार्केट जाना पड़ता था, तो वो इमाम अली को बुलाते थे और बुला के कहते थे या अली मेरी दुकान पे बैठ के आप 2 घंटे धंधा करो। मैंने कहा अली उस जगह पे नहीं बैठ सकता जहां बेमानी हो। मैंने कहा अली का बैठना इस बात की दलील है, समझ में आई बात, अली का बैठना इस बात की दलील है कि वहां बेमानी नहीं है। तो अब ये कंप्लीट मैसेज है चाहने वालों को कि अली उसी के घर में आएंगे जहां हलाल होगा। जब मुझे पैगाम देना मैंने दे दिया, अली उसी के पैसे को कबूल करेगा जो हलाल होगा, उसी की नजर कबूल करेगा जो हलाल तरीके से होगा। याद रखो ये मुहर्रम में ये डिसाइड करो, बीवी के हक को था, मैं डिटेल में नहीं जा रहा, ये मुहर्रम में मेरे यूथ को बोल रहा तुम इंकलाब लाओ, तुम इंकलाब लाओ, अपने घरों में जाके इंकलाब लाओ। दुआ ये करो कि परवरदिगार मैं पूरी जिंदगी हक का जहरा दे के खाऊंगा। आई नो ऐसी सुनोगे तुम, पैसे का मामला है तो ऐसी बात करते, जो हक के मिंबर है वो तो मैंने बोल दिया। कल मुझसे सवाल करे कि खैसरबाग में हजारों आदमी को एड्रेस कर रहे थे, हमारा कोई पैगाम दिया, मैंने अपना पैगाम दिया। अब आप क्यों, बस आज इनकम्प्लीट मजलिस छोड़ के जा रहा, कल भी बीबी खतीजा पे पढ़ूंगा मुकम्मल। मैं तो एक स्टूडेंट हूँ, 5 पूरा हमसा बीबी पे पढ़ूँ, इतने आपके वाकयात हैं। कल और इंटरेस्टिंग वाकयात आएंगे, आपकी शादी के कैसा शादी हुई, शादी के बाद क्या हुआ वो भी बताऊँगा इंशाल्लाह। एक सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद, बस दोस्तों शबे 4 मुहर्रम आ गई। तीन मुहर्रम गुजर गई, 4 मुहर्रम की रात आ गई, चंद दिन और बाकी है कि ये अज़ा खाने ये रौनकें सब खत्म हो जाएंगी, हर चीज खत्म हो जाएगी। हुसैन जो 28 रजब को मदीने से चले थे, 3 शाबान को मक्का पहुंचे और वहां से 8 ज़िलहिज को निकले, हज को उम्रे में बदल दिया। आठ को निकले, आहिस्ता आहिस्ता 2 या 3 मुहर्रम को कर्बला पहुंच गए, हुसैन कर्बला आ गए। अल्लाह हमको कर्बला की ज़ियारत नसीब करे। मौला हुसैन का बड़ा आबाद शहर है, बड़ा रौनक वाला शहर है कर्बला, जन्नत के हिस्सों में से एक हिस्सा है। अब आज की तारीख हुसैन कर्बला आ गए, खुद सोचो कि जब फातिमा का लाल कर्बला आया तो कैसे आया, जब जमीन कर्बला पे आपका काफिला पहुंचा, जिस घोड़े के ऊपर इमाम थे वो घोड़ा खुद ब खुद रुक गया। मौला तो जानते थे, मौला ने सवारी को बदला,
रिवायत का जुमला है कि छह सवारियों को बदला। फिर हुसैन झुके, झुक के जमीन से कुछ खाक को उठाया, सूंघा, जमीन पे गाड़ दिया। दाल के बनी असद के कबीले वाले हर तरफ से, जो कबीले वाले थे सब आ गए। उनको पता चला कि फर्जंद रसूल, रसूल का बेटा आया है, हुसैन इब्ने अली आया। पहली मरतबा लोगों ने मेरे गरीब इमाम की ज्यारत की, सब आ गए। मौला ने उनसे पूछा, ये बताओ कि ज़मीन का नाम क्या है? किसी ने कहा, मौला इसको मारिया कहते हैं। एक शख्स ने आगे बढ़ के कहा, इसको शक्ल फुरार कहते हैं। एक ने आगे बढ़ के कहा, मौला इसको नैनवा कहते हैं। मौला बार बार एक जुमला पूछ रहे कि इसका और कोई नाम है, और कोई नाम है। एक बुजुर्ग आगे बढ़ा और उसने कहा, फर्जंद रसूल इसको करबला कहते हैं। बस दोस्तों, आहिस्ता रोना नहीं है। हुसैन करबला आ गए, करबला आ गए। कहा कि मौला इसको नैनवा भी कहते हैं। एक ने कहा, मौला इसको करबला कहते हैं। बस नाम है, हुसैन को जानते हैं, नाम है करबला सुना। अब्बास से कहा कि भैया अमारियों को बिठाओ, अब हम यहीं रहेंगे। बनी असद वालों से बुलाया और बुला के कहा, ये ज़मीन मैं ख़रीदना चाहता हूँ। तो उन लोगों ने कहा कि मौला आप इस ज़मीन को मत ख़रीदो, ये ज़मीन किसी को राज नहीं आई। आहिस्ता नहीं रोना, मैं पीछे वालों को बोल रहा हूँ, पीछे वालों को। कहा, मौला ये ज़मीन किसी को राज नहीं आई। इमाम ने कहा, अब ये हमको राज आई, अब हम जिंदगी तमाम यहीं रहेंगे। अजीजों, खैमे लगाए गए, खैमे लगाए गए। सैदानियां उतरी, ऊन से खैमों में चली गई। शहजादी जैनब भी चली गई। बीवी को मालूम हुआ कि हुसैन जमीन को खरीद रहे, तो बीवी ने फिजा से कहा कि जाके हुसैन को ये, मेरे भैया को ये बोलो कि ये जमीन मेरे अली अकबर के नाम पे ले लो। हाय हाय हाय, मेरे बच्चे के नाम पे ये जमीन ले लो, अली अकबर के। क्या मालूम था कि आठ दिन के बाद सीने पे बच्ची खा के अली अकबर सो जाएगा। आहिस्ता नहीं रोना, आहिस्ता नहीं रोना। मौला तुमको आबाद रखे। इतना हजारों में मजमा कैसर बाग में बैठा हुआ, महफिले मोहिबान पंजतन का यह हिस्सा। दोस्तों, अभी हुसैन वहीं बैठे थे, जमीन की बातचीत हो रही, एग्रीमेंट बन रहा, फिजा फिर आई। आके मौका के आखा शहजादी ने बुलाया, बीबी का नाम सुना। मौला हुसैन उठे, उठकर सीधा खैमे में गए, शहजादी जैनब सलामुल्लाह अलैहा। जैसे ही हुसैन पहुंचे, बीबी ने कहा, भैया ये कैसी जगह है कि जब से आई हूं दिल बड़ा घबरा रहा, दिल बैठे जा रहा, इसलिए कि भैया तड़प के रोग। बीबी ने कहा कि भैया ये कैसी जगह है कि मेरा दिल बड़ा घबरा रहा। खैमे के पीछे से एक बीबी के रोने की आवाज आ रही है। इसी तरह बोल सकते। कैसर बात वालों, मौला तुमको सलामत रखे। कहा एक बीबी के रोने की आवाज आ रही। फिर शहजादी ने कहा, भैया वो बीबी ऐसे रोरी जैसा पूरा घर उजड़ गया। हुसैन ने कहा, बहन ये करबला है, तुमने आवाज को नहीं पहचाना, ये हमारी माँ फातिमा की आवाज है जो करबला में फरियाद कर रही कि परवरदिगार मेरा घर उजड़ गया। हुसैन वापस आए, बनी असद वालों से गुफ्तगु हुई, जमीन को खरीदा करबला की, डॉक्यूमेंट्स बने, साइन हुए। अब सुनो, तड़प के रोगे। मौला ने वो सारे पेपर जमीन के साइन होने के बाद वापस बनी असद वालों को कर दिया, हिबा किया, गिफ्ट किया। क्या कहकर गिफ्ट किया? क्या है बनी असद वालों, सुनो, मैं तुमको ये पेपर्स वापस दे रहा हूं। 10 मुहर्रम को हमारी शहादत हो जाएगी, हमारी
खबरें बनेंगी, हमारा मजार बनेगा। अगर उसके बाद कोई जार मेरी ज्यारत को आए तो उसको भूखा नहीं रखना, उसको प्यासा नहीं रखना, मेरे जार का ख्याल रखना। आज जो अरबईन में खाना खिलाया जाता ये हुसैन की वसीयत है। अरे कितना करीम है हुसैन, खुद भूखा शहीद हो गया, बच्चे प्यासे शहीद हो गए, लेकिन जार का इतना ख्याल कि मेरा जार आए तो पेट भर के। फिर मौला हुसैन ने बनी असद वालों को खरीब बुलाया, मर्दों को, उनके जेंट्स को खरीब बुला के कहा, सुनो 10 मुहर्रम को हमको शहीद कर दिया जाएगा, जालिमीन अपनी नजिस लाशों को दफन करके हमारी लाशों को छोड़ देंगे। मर्दों से कहा कि तुम लोग आना और हमारी लाश को दफन कर देना। क्या गरीब हो गया हुसैन, कितना गरीब हो गया मेरा मौला, कितना गरीब हो गया मेरा मौला। उसके बाद आहिस्ता मत रहो, आहिस्ता मत रहो। उसके बाद मर्दों से वसीयत करने के बाद हुसैन ने औरतों को बुलाया और औरतों से कहा कि अगर तुम्हारे मर्द हुकूमत के खौफ से हमको दफन ना करे तो तुम लोग आना, एक एक मुट्ठी खाक उठाना, हमारी लाशों पे डाल देना। अजीजों अब तक आपने सुन लिया, बर्दाश्त कर लिया, अब तक सुना बर्दाश्त किया, अब आप बर्दाश्त नहीं करेंगे। हुसैन इतना गरीब हो गया, मर्दों से वसीयत की, औरतों से वसीयत की, अब हुसैन की गुर्बत मेराज पे चली गई, छोटे छोटे बच्चों को बुलाया, गोद में उठाया, सर पे हाथ फेर के कहा, बच्चों अगर तुम्हारे माँ बाप दफन ना करे तो खेलते हुए आना। छोटे छोटे बच्चों से वसीयत की कि अगर माँ बाप दफन नहीं करे तुम खेलते हुए आना, एक एक मुट्ठी महा तुम्हारे जिस्म में डाल देना। बस मैंने मजलिस खत्म कर दी, मजलिस खत्म हो गई, 2 या 3 मिनट में खत्म कर रहा। आशूरा गुजर गया, फातिमा का घर उजड़ गया, छोटे छोटे बच्चे जिबा हो गए, जालिमों ने अली असगर को भी नहीं छोड़ा। हुसैन के 6 महीने के बच्चे को ऐसा तीर मारा जालिम हुरमला ने कि हुसैन का बच्चा जिबा हो गया। खाली जिबा नहीं हुआ, जब हुसैन ने अली असगर का मजार बना दिया तो शाम गरीबा में हुरमला ने उन नज़े की नज़े को लेके जमीन की नरमी देख रहा था, ऐसा जमीन पे नज़े मार रहा था कि एक दफा नज़ा मारा तो अली असगर का लाशा ऊपर आ गया, जब ऊपर आया तो रबाब के सामने गले को काटा गया। बस एक मिनट में खत्म कर रहा। 12 मुहर्रम को आज भी आशूरे में करबला में अल्लाह ज़ियारत नसीब करे, आज भी 12 मुहर्रम को बनी असद का काफिले वाले आते उसी अंदाज से आते। जब 12 मुहर्रम आई करबला में तो मर्द हजरात आगे बढ़े कि हुसैन ने हमसे वसीयत की थी, औरतों ने कहा नहीं हमसे भी की थी, औरतें भी आए, बच्चों ने कहा हम भी जाएंगे, सामने सामने मर्द, पीछे पीछे औरतें, उनके पीछे बच्चे करबला के मैदान में आए। तो अजीब मंजर देखा, जो सरदार था वो कहता है हर तरफ लाशें थी, किसी में सर नहीं था, हम परेशान परेशान देख रहे थे कि कौन है हमको नहीं मालूम। कहते हैं कि उसके बाद हमने देखा कि एक ऊंट पे खैदी आया, मैं क्या करूं, ऊंट पे खैदी आया, हथकड़ियां थी, पैर में भेड़िया थी, उसने कहा ठहरो मैं बताता हूँ, ऊंट को बिठाया, सच भी क्या? क्या ये मेरा भाई अली अकबर है? उसके बाद बनी असद वाले कहते कि फिर आगे बढ़ा, एक गठरी को खोला, उसमें लाश के टुकड़े